दिन भर तारीख 17 नवंबर दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। नोटबंदी पर संसद ने गुलाम नबी आजाद के बयान पर बवाल।
40 के लोग मरने वालों की संख्या पहुंच गई सर, हमारे ओड़ी में इसका आधा भी पाकिस्तान के आतंकवादियों की वजह से नहीं मरे थे।
भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि माफी मांगे कांग्रेस। सरकार ने कहा कि नोटबंदी का फैसला वापस नहीं होगा। 6 साल के लिए निकाले गए प्रोफेसर राम गोपाल यादव की वापसी हुई समाजवादी पार्टी में।
आंसुओं का असर हुआ होगा और भाई मुलायम सिंह यादव पसीज गए होंगे, लेकिन मुलायम सिंह यादव से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति आज के राजनीति में शायद ही कोई हो।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। नोटबंदी के मुद्दे पर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में मोदी सरकार पर निशाना साधा। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार की गलत नीति से जितने लोग मारे गए हैं उससे आधे तो पाकिस्तानी आतंकियों ने उरी हमले में नहीं मारे थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू ने कहा कि विपक्ष के नेता इस तरह के बयान देकर और इसकी तुलना पाकिस्तानी आतंकी हमलों से करके राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सरकार ने 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी के मद्देनजर किसानों और शादी ब्याह वाले परिवारों को राहत दी है। किसानों को कृषि ऋण के तहत उनके खाते में आई राशि में से हर हफ्ते 25,000 रुपए तक निकालने की छूट देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही चेक से या ऑनलाइन खाते में जमा होने वाली राशि में से भी किसान हर हफ्ते 25,000 रुपए निकाल सकेंगे। साथ ही सरकार ने फसल बीमा प्रीमियम के भुगतान की अवधि 15 दिन बढ़ा दी है। जिनकी शादी है उनके माता या पिता केवाईसी को पूरा करते हुए 2.5 लाख रुपए अपने बैंक खाते से निकाल सकेंगे। दक्षिण कोरिया की संसद ने उस घोटाले की स्वतंत्र जांच की मंजूरी दे दी है जिसमें देश की राष्ट्रपति पाक गुनहे का नाम है। एक विशेष टीम 4 महीने में इस आरोप पर गौर करेगी कि राष्ट्रपति ने अपनी दोस्त को पर्दे के पीछे से हेर फेर करने दी या नहीं। एक स्वतंत्र जांच में अभियोजन पक्ष की एक टीम मामले को लेकर राष्ट्रपति पाक से बातचीत करने का पहले ही ऐलान कर चुकी है। उनकी लंबे अरसे से चली आ रही विश्वास पात्र चोई सून सिल हिरासत में है। उन पर दोस्ती की आड़ में राष्ट्रपति से वित्तीय फायदा लेने के आरोप हैं। संसद के अध्यक्ष चुंग से क्यू ने वोटिंग का ऐलान करते हुए कहा, नतीजा इस तरह है, 225 सांसदों में से 210 इसके पक्ष में हैं, 4 विरोध में और 11 अनुपस्थित हैं। तो मैं इस संदेह पर कि पाक प्रशासन ने चोई सून सिल समेत साधारण कर्मचारियों को राज्य के मामलों में हेरफेर करने की अनुमति दी, जांच पड़ताल करने की योजना के बिल की मंजूरी का ऐलान करता हूं। ये थे चुंग से क्यू के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दुनिया के सबसे पुराने पत्थर पर नक्काशी किया हुआ 10 कमांडमेंट्स यानी 10 आज्ञापत्र की नीलामी अमेरिका के बेवरली हिल्स में हुई। इस प्राचीन पत्थर की बोली $8,50,000 में लगी। 2 वर्ग मीटर से भी कम की इस संगमरमर की पट्टी पर प्रारंभिक हिब्रू लिपि सेमेरिटन में लिखा गया है। नीलामकर्ता का कहना है कि ये 300 से 500 ईस्वी के बीच की है और इसे इसराइल के किसी यहूदी उपासना गृह के प्रवेश पर लगाया गया होगा। पत्थर की ये पट्टी 1913 में एक रेलवे लाइन की खुदाई के दौरान मिली थी। इसे सार्वजनिक संग्रहालय में प्रदर्शित करने की शर्त पर बेचा गया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। पिछले कई दिनों की तरह आज भी जब सवेरा हुआ तो महानगरों की जनता फिर से बैंकों और एटीएम के आगे उमड़ने लगी, इस उम्मीद में कि उनके हाथ किसी तरह कुछ नकदी आ जाए। जनता लाइन में थी तो संसद में आज फिर 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के मुद्दे पर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी और राज्यसभा की कार्यवाही तो कई बार स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और विपक्षी सांसदों ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री सदन में आकर इस मुद्दे पर देश को जवाब नहीं देते तब तक वो सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने नोटबंदी के चलते मारे गए लोगों को उड़ी में सैन्य हमलों में मारे गए लोगों की से उनकी तुलना की। संसद में क्या कुछ हुआ नजर रखी है अमर शर्मा ने।
मोनेटाइजेशन का किस तरह से अब शायद 40 के लोग मरने वालों की संख्या पहुंच गई सर, हमारे ओड़ी में इसका आधा भी पाकिस्तान के आतंकवादियों की वजह से नहीं मरे थे, उससे दुगने आज हमारी सरकार की गलत नीति की वजह से लोग मर गए।
राज्यसभा में बवाल कांग्रेसी सांसद गुलाम नबी आजाद के इसी बयान पर शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने नोटबंदी के चलते लोगों की मौत की तुलना उड़ी में मारे गए सैनिकों से की। आजाद के इस बयान पर बीजेपी के सांसद भड़क गए और वेंकैया नायडू ने इसे पाकिस्तान की हिमायत बताया।
पाकिस्तान को सर्टिफिकेट दिया है, शर्म का बात है देश का। देशवासी बहुत नाराज है, दुखी से इसे जो बात उन्होंने कहा।
वेंकैया नायडू कह रहे थे, नेता विपक्ष का बयान उद्दंड, आपत्तिजनक और देश विरोधी है। पाकिस्तान इस बयान का इस्तेमाल करेगा। मैं पीठासीन अध्यक्ष से मांग करता हूं कि इस बयान को संसद के रिकॉर्ड से हटाया जाए। पाकिस्तान के आतंकवाद की वजह से देश के हजारों लोगों की मौत हुई है। आप पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये थे वेंकैया नायडू के शब्द। इसके जवाब में गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी को कड़ी प्रतिक्रिया दी।
आतंकवादी पाकिस्तान के लोगों के हमने मुकाबला किया है, आप उनकी दावतें खाते हो, बिना बुलाए उनकी शादी ब्याह में जाते हो।
संसद का शीतकालीन सत्र कल शुरू हुआ था। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नोट बंद होने के मुद्दे पर आज कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था, यानी संसद की तयशुदा कार्यवाही को फिलहाल स्थगित कर नोटबंदी के बाद पैदा हुई स्थिति पर चर्चा की जाए। वहीं लोकसभा में भी विपक्ष ने नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा की मांग की, जिस पर बीजेपी नेता अनंत कुमार ने कहा कि सरकार चर्चा और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। लेकिन प्रधानमंत्री के सदन में पहुंचकर बयान नहीं देने पर संसद में हंगामा होता रहा और आखिरकार लोकसभा और बाद में राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के बाहर लोकसभा में कांग्रेस सांसद दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के इस फैसले को अपनी नाकामी छुपाने का बहाना बताया।
सोच विचार करके आप नहीं लाए, सिर्फ देशभक्ति का बात बता रहे हैं, इसीलिए कि आपके फेल्योर्स को छुपाने के लिए, ये ठीक नहीं।
वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा,
ऑपोजिशन बोल रहा है सर प्रधानमंत्री को भी आना है वहाँ सुनने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यहाँ भी वोटिंग होना चाहिए या जो अलग अलग अप्रोच होना चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन इकट्ठा है।
कांग्रेस सांसद कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने स्पीकर से नियम 56 के तहत चर्चा कराने की मांग की थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया।
वो जो 56 नंबर रूल है वो निंदा का रूप लेता है, स्पीकर ने इसे स्वीकार नहीं किया है। अगर इस समय हम सरकार की निंदा नहीं करें और ये एक ऐसा महत्वपूर्ण मामले पर इस प्रकार की चर्चा न हो तो एक सामान्य चर्चा हो जाए, ये हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि आज आम जनता त्रस्त है, हम जनता के साथ खड़े हैं।
वहीं सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने बताया कि आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए।
आज का दिन प्रधानमंत्री का दिन है राज्यसभा में, अगर वो आते हैं तो जवाब देनी पड़ती है उनको। गरीब का जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है ये सरकार और प्रधानमंत्री, और ये बात आज उठती हमारे सदन में, और उसे बचने के लिए ये पूरा का पूरा ये खेल हो रहा।
बीएसपी प्रमुख मायावती ने नोटबंदी को अति संवेदनशील मुद्दा बताया है और सरकार से जवाब की मांग की है।
माननीय प्रधानमंत्री जी हाउस में रहने चाहिए, क्योंकि उनका ये डिसीजन है, लेकिन वो कल भी नहीं आए, जबकि कल तो लोकसभा भी नहीं चल रहा था, राज्यसभा चल रहा था, कल वो फ्री थे, आ सकते थे, और आज पूरा विपक्ष उनसे जवाब चाहता है।
सड़क से संसद तक हमलावर विपक्ष ने सरकार पर बिना तैयारी के देश की जनता को परेशान कर आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालात पैदा करने के आरोप लगाए हैं। हालांकि सरकार अपने बचाव में यही कहती रही कि देश की जनता इस फैसले में उसके साथ है।
संसद में क्या कुछ हुआ, अमर शर्मा की रिपोर्ट आप सुन रहे थे। जब संसद में विपक्ष सरकार पर हमले कर रहा था, उसी वक्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संग दिल्ली के सब्जी मंडी में सरकार के फैसले के विरोध में दुकानदारों और आम जनता के बीच उतरे। उन्होंने मोदी सरकार पर हमले किए। पहले केजरीवाल और इसके बाद ममता बनर्जी को सुनिए।
500-500 के नोट बंद करके 2-2 हजार के नोट लाके भ्रष्टाचार दूर करेंगे, मेरी तो समझ के परे है भाई साहब। कई लोगों से बात कर ली मैंने पूछा, ये बताओ 500 का नोट खत्म करके 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होएगा? भाई पहले किसी को 1 लाख रुपए रिश्वत देनी होती थी, वो जेब में 100 नोट लेके जाता था 1-1 हजार के, अब उसको 85 नोट लेके जाने पड़ेंगे 1-2 हजार के, तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होएगा भाई साहब?
सब्जी मंडी नहीं चलेगा, सब्जी बाजार में नहीं आएगा तो क्या डायमंड खाएगा, ना क्या एटीएम खाएगा, क्या खाएगा लोगों ने? पहले तो खाने दो, रोटी कपड़ा मकान पहले दो, सबसे ज्यादा छोटा चीज होता है रोटी कपड़ा मकान, ये है हिंदुस्तान, अब सब भूल गया है।
ममता बनर्जी की आवाज आप सुन रहे थे। इसके बाद ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के दफ्तर पहुंचे, जहां लोग नोट बदलवाने के लिए लाइन में थे। ममता बनर्जी ने सरकार को अपना फैसला पलटने के लिए 3 दिन का वक्त दिया। सुनिए जनता की आवाज, कुछ फैसले के पक्ष में है तो कुछ अपनी दिक्कत बयां कर रहे हैं।
हमें सर कोई दिक्कत नहीं है, जो फैसला करा है सरकार ने बहुत अच्छा करा है। काले धन रोकने के लिए इससे बड़ा डिसीजन आया हो नहीं सकता। 70 साल से यही चल रहा था कि जो अमीर अमीर बनता जा रहा, जो गरीब है गरीब बनता जा रहा, बिल्कुल सही डिसीजन हमारे मोदी जी का ही है। सर हम ये चाहते हैं कि केजरीवाल और ममता बनर्जी मोदी जी के फैसले का समर्थन करें और वो जनता का साथ दें। अगर जनता का साथ दे, जनता बहुत खुश है इस फैसले से कि हमें बहुत कम्फर्ट महसूस हो रहा है।
अच्छा करना है, सुबह 6 बजे से लाइन में खड़ा हूँ लेकिन अभी मेरा नंबर नहीं आया है। बिना कुछ खाए भी अभी तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बहुत परेशानी हो रही है।
देश हित में बड़ा फैसला आया है, इस फैसले से हम खुश हैं। दिक्कतें हो रही है लेकिन दिक्कतों का सामना कर सकते हैं।
बहुत खुश है सर, बहुत खुश है।
आम जनता की आवाज कुछ पक्ष में है और कुछ सरकार को घेर रहे हैं कि उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान आज बीबीसी के दफ्तर में थे। उनसे बात की राजेश जोशी ने और पूछा कि सरकार जब काले धन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं?
जो मेरी पार्टी है वो तो एंटी करप्शन आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हम कदाचित भी किसी भी पक्ष से हम काले धन के पक्ष में नहीं है, लेकिन उसका कोई तरीका तो होना चाहिए था ना। बच्चों के पिगी बैंक जीरो हो गए, जो माँ ने थोड़े बहुत पैसे इमरजेंसी के लिए बचा के रखे थे वो जीरो हो गए। सोशल स्ट्रक्चर ही तोड़ दिया इन लोगों ने। 1.5 किलोमीटर लंबी लाइनें एटीएम और बैंकों के सामने लगी हुई हैं कि जिनका काला धन था वो तो पता ही नहीं कहाँ चले गए। ये जो लाइनें लगी हुई हैं, ये जो टीवी पे देखो, ये काले धन वाले थोड़ी हैं, ये तो स्टूडेंट हैं, ये तो घर गृहस्थी चलाने वाली औरतें हैं। बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, मरीजों को दवाई नहीं मिल रही।
अच्छा मान साहब, ये बताइए कि इतने लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं, पैसा निकालने के लिए परेशान हैं, लेकिन आपके पास कोई फॉर्मूला है आप कैसे काले धन को खत्म करेंगे? या फिर ऐसा तो नहीं कहीं कि आपको सिर्फ विरोध करना ही आता है, आपके पास कोई दरअसल रोड मैप है नहीं?
नहीं, विजय माल्या कहाँ है? 9,000 करोड़ लेके भाग गए, कहाँ है वो? उनकी संपत्ति जो है उसको ये करेंगे, वो पर्ल के मालिक हैं मिस्टर भंगू, वो पता ही नहीं कितने लाख करोड़ रुपए जो है लोगों का चिटफंड कंपनियों के लिए लेके भाग गए। बात तो हुई थी स्विस बैंक की, क्या स्विस बैंक पे नहीं जा सकते थे? अपने अपने ही लोगों को, किसी का 2,000 किसी का 3,000 दिहाड़ी पे नहीं जा रहे? 4 दिन कमाने में 10 दिन बदलाने में क्यों लोगों की दिहाड़ी खराब की? इन लोगों ने इन्होंने पहले सोचा नहीं था कि एटीएम में 2,000 का नोट नहीं आएगा? पहले एटीएम का मतलब ऑल टाइम मनी था, आजकल एटीएम का मतलब आएगा तो मिलेगा। छोटा दुकानदार और व्यापारी हो चुका है दिवालिया। 9,000 करोड़ लेकर विदेश में विजय मना रहा है कोई मालिया। दुश्मन शरेआम बॉर्डर पार कर रहे हैं, हर रोज हमारे जांबाज जवान मर रहे हैं। 10 सर काट के लाएंगे अगर वो एक काटते हैं, लेकिन मोदी साहब नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटते हैं। एक तरफ हैप्पी बर्थडे टू यू, दूसरी तरफ खून के दरिया बहते हैं। बता दीजिए सरकार जी, क्या इनको अच्छे दिन कहते हैं? काले धन के बारे में कुछ लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखने से पहले पहले स्याही सूख जाती है। हर वादा झुमला निकला, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है
इस वक्त। अच्छा मान साहब, आज जब हम बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के आजादपुर मंडी इलाके में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ एक बहुत बड़ा जुलूस और प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में क्या कोई संयुक्त मोर्चा बन सकता है विपक्षी राजनीतिक पार्टियों का, या फिर अरविंद केजरीवाल ये राजनीतिक लड़ाई अकेले लड़ेंगे?
ये फैसला मैं यहाँ पे बीबीसी के स्टूडियो में बैठ के मैं नहीं बता सकता। इसकी कलेक्टिवली
इसकी जरूरत है कि नहीं, विपक्षी एकता की जरूरत है
रूप से हम फैसले लेते हैं,
मतलब इसका कहीं भी साफ जवाब नहीं देना।
कहीं भी लोगों के, आम लोगों के पक्ष में हमें खड़ा होने की जरूरत पड़ी तो हम अक्रॉस द पार्टी लेवल भी जा सकते हैं।
आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान। नोटबंदी के बारे में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये मुहिम भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ एक धर्म युद्ध है और इस युद्ध में देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हुई है। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद ने भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा से बात की।
श्रीकांत जी, कतारें अभी भी लंबी हैं देश भर में बैंकों के सामने, एटीएम के सामने, प्रधानमंत्री ने ये ज़रूर कहा है कि आप थोड़ा तकलीफ़ उठाएं, 50 दिन का मामला है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ अब ये कह रहे हैं कि ये कई महीने, तीन चार महीने खींच सकता है।
देखिए, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ धर्म युद्ध है और इस युद्ध में देश की जनता प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ खड़ी हुई है। इस युद्ध में निश्चित रूप से दिक्कतें हैं, कुछ ना कुछ परेशानियाँ भी हैं, लेकिन परेशानियों को भी आम जन समझ रहा है, दिक्कतों को भी आम जन समझ रहा है और दिक्कतों को दूर करने के लिए लगातार केंद्र सरकार पहल कर रही है। 10 बड़े कदम इन दिक्कतों को दूर करने के लिए केंद्र की सरकार ने उठाए हैं और उसका लाभ सीधा सीधा लोगों को मिल रहा है। तो जो किसान की चिंता कर रहे हैं, गांव की चिंता कर रहे हैं, गरीब की चिंता कर रहे हैं, वो दिखावा है। वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियाँ, वो अपने जो काला धन उन्होंने संचय किया है उसकी चिंता कर रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी का वो नाम ले रहे हैं।
सरकार की तैयारी सही नहीं थी, ये कई लोग जो लाइनों में खड़े हैं वो भी कह रहे हैं।
विपक्ष कंफ्यूज है, विपक्ष के नेता कभी कहते हैं कि अपने नेताओं को बता दिया इसलिए उन लोगों ने उसका लाभ उठाया, कभी राहुल गांधी कहते हैं कि देश के वित्त मंत्री को ही नहीं पता था। निश्चित रूप से ये मुहिम बहुत सीक्रेट मुहिम थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको खुद मॉनिटर कर रहे थे और इस ये मुहिम कितने खतरनाक लोगों के खिलाफ है, बहुत ताकतवर लोग हैं जनाब जो इस देश के अंदर फेक करेंसी का रैकेट चलाते हैं। निश्चित रूप से उसमें दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं क्योंकि ATM मानव नहीं है, मशीन है।
जो विपक्ष की एक मांग संसद में उठी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई जाए ताकि जो उनका इल्ज़ाम है,
विपक्ष भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है, काले धन के साथ खड़ा हुआ है। भ्रष्ट पहले, भ्रष्टाचार और काले धन का साथ छोड़े और जो भी उनका सुझाव होगा विपक्ष का, निश्चित रूप से सरकार चर्चा तो करो। आप चर्चा से भागते हो क्योंकि आपके मन में चोर है, आप भगोड़े हो।
कुछ लोगों का विपक्ष में ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो बड़े नेता हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दी गई थी, कहाँ तक सच है?
कन्फ्यूज़न है, राहुल गांधी खुद कन्फ्यूज हैं, पहले कहते हैं कि अपने नेताओं को बता दिया, फिर कहते हैं कि देश के वित्त मंत्री को नहीं पता। तो ये दर्द कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, दर्द इनको खुद है क्योंकि इन्होंने काले धन का संचय किया है, भ्रष्टाचार से धन अर्जित किया है और वो अब कागजों के टुकड़ों में तब्दील हो गया है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों का बचाव कर रहे थे।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम, BBC हिंदी।
आप सुन रहे हैं BBC हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी से निष्कासित नेता राम गोपाल यादव को का निष्कासन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है, साथ ही उनके सभी पद वापस दे दिए गए हैं। इस तरह से प्रोफेसर राम गोपाल यादव राज्यसभा में समाजवादी पार्टी संसदीय दल के नेता, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता व केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य के रूप में काम करते रहेंगे। तो भाई भाई फिर मिलने से क्या गांठ सुलझ गई? विश्लेषण के लिए मैंने बात की वरिष्ठ पत्रकार अंबिकानंद सहाय से।
देखिए, समाजवादी पार्टी की स्थिति कमोबेश जो कल थी वो आज है और शायद कल भी रहेगी। मेरे कहने का मतलब है कि ये एड हॉकिज्म पे चल रहे हैं। राम गोपाल जी अभी हाल ही में पत्रकार वार्ता के दौरान रोते हुए देखे गए, तब स्थिति साफ नहीं थी कि वो पार्टी में राज्यसभा में नेतृत्व के पद पर फिर लौट पाएंगे या नहीं। अचानक कल उनको देखा गया नेतृत्व करते हुए राज्यसभा में अपनी पार्टी का, आंसुओं का असर हुआ होगा और भाई मुलायम सिंह यादव पसीज गए होंगे।
तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि दाग धुल गए?
दाग धुले या नहीं धुले, ये मुलायम के हृदय में जो दाग था वो तो धुल ही गया, ये तो स्पष्ट है। और अब आगे वो दिल्ली में अपनी पार्टी का नेतृत्व करेंगे ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन मुलायम सिंह यादव से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति आज के राजनीति में शायद ही कोई हो। कल क्या स्थिति होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है।
कभी किसी नेता को बाहर निकाला जाना, सरकार में मंत्री बाहर गए फिर अंदर आए, ये कुल मिलाकर पार्टी के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति है, तो जनता कैसे समझेगी इस चीज को?
तो इसीलिए तो आज जो रूलिंग पार्टी है समाजवादी पार्टी, आज चुनाव कुछ ही दिन बाकी हैं और स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। वो शायद भारतीय जनता पार्टी की गलतियों के कारण अगर पुनर्जीवित हो जाएं तो बात दूसरी है, अदरवाइज जो स्थिति पार्टी की अंदरूनी है, जो सरकार में कंफ्यूजन है लखनऊ में और जो जो सारे जनमानस में समाजवादी पार्टी के कुनबे की लड़ाई की वजह से जो छवि उभर के आई है उससे तो उनकी राजनीतिक भविष्य बहुत अच्छी नजर नहीं आती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैं पुनः दोहरा दूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के ब्लंडर्स के कारण वो शायद फिर खड़े हो पाए, ऐसा हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा।
अब ये माना जाए कि सारा कुनबा एक हो गया,
वही मैंने पिछली बार रहीम खान खाना की मैं दोहे सुनाया था कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मधुपान रहीमन दाबे न दबे जानत सकल जहान। ये जो बैर है आपसी, ये है एक सच्चाई है और वो जबान पे आ जाता है और वो मिट नहीं सकता, वो नहीं मिटेगा। लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा ग्लू होता है जो सबको बांधे रहता है और खास करके चुनाव के पहले। अब तो वो बर्बाद हो जाएंगे अगर इकट्ठे नहीं नजर आएंगे, तो इकट्ठे होने की ये एक कोशिश है लेकिन भविष्य बहुत स्पष्ट नजर आता नहीं है।
इकट्ठे होने की कोशिश है, भविष्य साफ नजर नहीं आता, विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अंबिकानंद सहाय। और अब आपकी राय।
आपकी राय, आपकी राय में आज मैं हूँ वंदना और आज मैं आपके लिए विशेष तौर पर खींच कर लाई हूँ रूपा झा को।
बाप रे, खींच कर नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हम अपनी मर्जी से स्वेच्छा से आप सबसे मुखातिब होने आए हैं।
बहुत चिट्ठी आती हैं कि कहाँ है रूपा झा।
यहाँ है।
चलिए,
बहुत अच्छा लग रहा है एक जमाने अरसे बाद एक बार फिर से रेडियो के दोस्तों के साथ बातचीत करने का मौका मिल रहा है। जी वंदना
जी, तो शुरू करें सिलसिला।
बिल्कुल,
बहुत सारी जो ईमेल हैं वो आई हैं, जो बीबीसी अपनी नई सेवाएं शुरू कर रहा है उस पे जिशान नैयर हैं बेगूसराय बिहार से, उन्होंने लिखा है कि बहुत ही खुशी हुई ये जानकर कि 11 नई भाषाएं आ रही हैं जिसमें से 4 भारत की हैं। पहले तो लगा था कि रेडियो कहीं ख़त्म ही ना हो जाए, लेकिन अब ये एकदम बाग बाग है। ऐसी चिट्ठियाँ और भी आई हैं, एहसान असगर साहब हैं मलकानपुर से, तो सब ने बहुत खुशी जाहिर की है।
जिशान बहुत शुक्रिया, और हम सब बहुत खुश हैं दरअसल कि बीबीसी का 1940 के बाद वर्ल्ड सर्विस का इतना बड़ा विस्तार हो रहा है जिसमें कि अफ्रीका में नए सर्विसेज आ रही हैं और एशिया में, जैसा कि आपने लिखा सही लिखा कि 4 नई भाषाएं आ रही हैं, हिंदी और तमिल तो है ही जिसे हम भारतीय भाषाओं के तहत मानते हैं, और जाहिर है उर्दू और बांग्ला तो
पहले
से ही हैं, पर भारतीय भाषाओं के छतरी के नीचे हम हिंदी तमिल को जोड़ते हैं जो पहले से काम कर रही हैं, और उसमें 4 जो नई भाषाएँ हैं वो है तेलुगू, पंजाबी, मराठी और गुजराती। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर काम शुरू हो, और जाहिर है इसमें काफ़ी सारे पोजीशंस आएंगी, और अगर आप में से कोई रुचि रखता हो
जी बिल्कुल
तो, हाँ तो ये वेबसाइट है, यहाँ भी पूरी जानकारी नहीं है, एक महीने में और ज़्यादा जानकारी आएंगी वैकेंसीज जब खुलेंगी। URL है www.bbc.co.uk/careers/world-service। वर्ल्ड सर्विस एक वर्ड है, तो आप इस पर जब जाएंगे तो आपको आने वाले दिनों में सारी जानकारी, जिसे हम वर्ल्ड सर्विस 2020 प्रोजेक्ट जिसके नाम से जानते हैं, उसके बारे में जानकारी मिलेंगी, नई नौकरियों की जानकारी मिलेगी। तो इन 4 भाषाओं में जो भी
तो श्रोता जो जुड़ना चाहते हैं,
काम करना चाहते हैं, वो ज़रूर इसको देखते रहें और आगे आएँ।
जी बिल्कुल, और जैसे जैसे नई जानकारी आ गई हम लोग ज़रूर बांटेंगे।
बस एक बात और वंदना, क्योंकि कई सारे प्रेस रिलीज में एक शायद कन्फ्यूजन रहा हो कि ये 4 नई भाषाएं दरअसल डिजिटल और टेलीविजन सेवाएं होंगी, रेडियो पे नहीं है, लेकिन जाहिर है ऑडियो का एक बहुत बड़ा जखीरा हमारे लिए
मौजूद होगा, नया जुड़ जाएगा,
बिल्कुल नया जुड़ेगा, पर ये मुख्यतः डिजिटल और टेलीविजन सर्विसेज होंगी।
जी बिल्कुल, और अब जो चिट्ठियां हैं, जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है नोटबंदी, जिसको एक शब्द बोला जा रहा है, थोड़ी सी शिकायत भी है। जैसे ये साहब हैं उमेश अग्रवाल साहब महाराष्ट्र से, ये लिखते हैं कि इन्हें लगता है कि बीबीसी जो है इस जो फैसला है इसका समर्थन नहीं कर रही है, और ऐसे अर्थशास्त्रियों को कार्यक्रम में बुलाया जा रहा है जो शायद इसके हक में नहीं है, तो ऐसा इनका अपना नज़रिया है। ऐसे एक और भी श्रोता है।
देखिए, एक तो हम आपको ये कहना चाहेंगे, हम सब पूरे बीबीसी परिवार आपको ये भरोसा दिलाना चाहेगा कि जो सत्यता और निष्ठता और निष्पक्षता जो हमारा एक बेसिक आधार है पत्रकारिता करने का, उसमें कहीं भी कभी भी शंका मत कीजिए कि उसमें कहीं से कोई कमी रह जाती है, हम पूरी कोशिश करते हैं। हमने तमाम तरह के अर्थशास्त्रियों से बात की है जिन्हें कथित तौर पर सरकार समर्थक भी माना जाता है, और चाहे वो मोहन गुरुस्वामी हो या फिर
परंजॉय से
परंजॉय हो या राकेश रंजन हो, तमाम लोगों से हम लोगों ने बात की है। पर एक बात को नकारा नहीं जा सकता है कि अगर पूरी तरह से मूड आम लोगों का और अर्थशास्त्रियों का सरकार के इस फैसले के हक में नहीं हो तो उसे आप जबरदस्ती बैलेंस भी नहीं कर सकते हैं। और जुबैर साहब ने आज ही बात की है बीजेपी के प्रवक्ता से, श्रीकांत जी से, तो उनका भी आप रेडियो पे सुनेंगे कार्यक्रम और वेबसाइट पर देखेंगे। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हर एंगल को, हर आयाम को कवर किया जाए, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या आम लोगों का,
जो जैसा है दिख रहा है उसको एडजस्ट कर पेश किया जाता है। अब कुछ तारीफ की बात हो जाए,
शुक्रिया।
ये हैं कुमार दीपक जी, ये कहते हैं कि आदेश कुमार गुप्त का नाम लिया कि इतने बड़े फैन हैं कि बीबीसी हिंदी सुनने की 50% वजह आदेश कुमार गुप्त है और उन्हीं की आवाज़।
50 तुम्हारी वंदना।
जाहिर है उनके जो खेल समाचार है उसकी जो शैली है वो इन्हें काफी ज्यादा पसंद आती है, तो मेरी बात ये कह रहे उन तक प्लीज पहुंचा दी जाए।
जरूर पहुंचा दी जाएगी, वो आदेश जी बहुत खुश होंगे जानकर। कौन नहीं खुश होगा भाई कि श्रोता पसंद करते हैं उन्हें।
और ये पोस्ट कार्ड तो लेना जरूरी है वरना नाराज हो जाते हैं।
बिल्कुल जरूरी है। ये लिखने वाले हैं फारूक अब्दुल्ला फिजा, लक्ष्मीपुर रक्सौल पूर्वी चंपारण बिहार से। दूसरा पोस्ट कार्ड आया है ग्राम खाराबेरा भीमवाता जोधपुर राजस्थान से, ये लिखने वाले हैं राजू राम सेन। और तीसरे अंग्रेजी में ये पोस्ट कार्ड लिखा है एफएन पांडा ने कालाहांडी ओडिशा से। तीनों ही की चिट्ठियां जो है वो मणिशंकर अय्यर साहब के साथ जो राजेश जोशी की बातचीत
स्टूडियो आए थे, वो
बिल्कुल स्टूडियो आए थे और उस पर जो बातचीत हुई थी उस पर उनकी टिप्पणी है। ये एक चिट्ठी है फारूक साहब की जिसको हम पढ़ के बता दें। ये कह रहे हैं कि राजेश जोशी द्वारा कांग्रेस नेता श्री मणिशंकर अय्यर जी का लिया गया इंटरव्यू लाइव देखा और सुना, बहुत पसंद आया। पहली बार फेसबुक पर राजेश जी को देखना बहुत सुखद अनुभव रहा। ये बात तो सही है, हमारा भी सुखद अनुभव होता है उनको देखते रहने का। ये दूसरी चिट्ठी है जो कि राजू राम सेन ने लिखा है, ये अध्यापक हैं, कहते हैं कि राजेश जोशी ने मणिशंकर जी को वाजिब और खरे खरे सवालों के बाणों से कटघरे में लिया था, सही सही और हकीकत उनसे राज खुलवाए, काबिले तारीफ। पर राजेश जी जब ये खुद घर से बेघर हो गए तो उनकी राय कांग्रेस की राय नहीं कही जा सकती।
वो जैसा कि है कि वो खुद भी उन्होंने स्वीकार किया कि थोड़े साइडलाइन हैं वो इस समय कांग्रेस में,
तो बिल्कुल सही बात है, उनकी राय को ठेठ कांग्रेस की राय नहीं समझी जाएगी।
तो रूपा समय हो चुका है, वक्त इतना ही है जी। आपके साथ वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। नमस्कार।
और कार्यक्रम में आज खेल समाचार आदेश गुप्त नहीं सुना रहे, सुना रही राखी शर्मा।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। राजकोट टेस्ट से सीख लेते हुए विशाखापट्टनम में भारतीय टीम की जोरदार शुरुआत हुई है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज से विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही भारतीय टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने पर 4 विकेट के नुकसान पर 317 रन बनाए। क्रीज पर विराट कोहली 151 और नाइट वॉचमैन आर अश्विन 1 रन बनाकर मौजूद हैं। राजकोट से विपरीत विशाखापट्टनम में टॉस ने भारत का साथ दिया। पहले बल्लेबाजी का फैसला हालांकि शुरुआत में गलत जाता दिखा जब सलामी बल्लेबाज केएल राहुल बिना खाता खोले स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर अपना विकेट दे बैठे। इसके बाद 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर मुरली विजय भी 20 के निजी स्कोर पर जेम्स एंडरसन का शिकार हो गए, लेकिन फिर भारतीय कप्तान विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा ने पूरी तरह से भारतीय पारी को संभाला। तीसरे विकेट के लिए दोनों के बीच 226 रन की साझेदारी हुई। इस दौरान पुजारा ने अपना 10वां और विराट ने अपना 14वां टेस्ट शतक लगाया। पुजारा की 119 रन की पारी पर जेम्स एंडरसन ने विराम लगाया। दिन का 4था विकेट अजिंक्य रहाणे के रूप में गिरा, उन्होंने 23 रन बनाए। और वहीं टेनिस में कल ATP वर्ल्ड टूर फाइनल्स में स्टैन वावरिंका के खिलाफ अपना मुकाबला जीतकर विश्व नंबर 1 खिलाड़ी एंडी मरे सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने उतरेंगे। केई निशिकोरी के खिलाफ निराशाजनक प्रदर्शन के बाद विश्व नंबर 3 वावरिंका को मारिन सिलिक के खिलाफ जीत हासिल हुई थी। मरे के खिलाफ अपने मुकाबले को लेकर वावरिंका आश्वस्त हैं और दोनों के बीच हुए पिछले मुकाबले को याद करते हैं।
ये टफ मैच था, उस वक्त मरे के पास लंदन ओलंपिक के गोल्ड के अलावा डेविस कप खिताब भी था। ये अद्भुत है कि अब वो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक अच्छा मैच होगा और कल यहाँ आकर खेलना एक अच्छा अनुभव होगा। मुझे यकीन है मैं अच्छा करूँगा।
खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और अब मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। नोटबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में कहा कि सरकार की गलत नीति से जितने लोग मारे गए उससे आधे तो पाकिस्तानी आतंकियों ने उरी हमले में नहीं मारे थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू ने विपक्ष के नेता के इस तरह के बयान के लिए कहा कि इसकी तुलना पाकिस्तानी आतंकी हमलों से करके राष्ट्र का वो अपमान कर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। मोहनलाल शर्मा को विदा दे घटनाचक्र तक के लिए नमस्कार।